अच्छा, फिर तौबा की जहां बात आई तो तौबा के ऊपर आगे बताया गया, इन्नम तौबा, तो बेशक जो तौबा है अल्लाह ही अल्लाह के जिम्मे है, लिल्लदीन यामलून सू अबी जहालतिन, उन लोगों के लिए जो अमल करते हैं बुरा जहालत के साथ। जहालत क्या होती है? एक जहालत तो वो है कि जब इंसान को पता ही नहीं है, असल आपको पता ही नहीं था विरासत के क्या है, कमाता है, अब पता चला है तो ठीक है, ओहो हम तो नहीं ऐसा करेंगे, और उसको फौरन आपने सोचा कि नहीं ये नहीं करना। अब चाहे किसी ने ऐसा कोई काम किया है, मसलन है मिसाल के तौर पे हम पिछली बात को ही अगर लेके कंटिन्यू करें, किसी ने अपनी बीवी के साथ ही कौमे लूत वाला अमल किया लेकिन नहीं पता था उस वक्त, तो तौबा, क्योंकि लोग ऐसा अपनी बीवियों के साथ भी करते हैं, और हदीस में आता है अल्लाह ताला उस आदमी की तरफ भी रहमत की नजर से नहीं देखता जो मर्द अपनी औरत के साथ ऐसा गैर फितरी अमल करता है। और एक और हदीस में अल्लाह हक बयान करने में शर्म नहीं करता, ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफा फरमाई, फिर फरमाया औरतों के पास गैर फितरी तरीके से मत आया करो, हमने पढ़ा था ना ये खेतियां तुम्हारी, तो खेती में बीज जहां डालना है वैसे ही डालना चाहिए। इसी तरह एक हदीस में आता है जो मर्द पीरियड्स में अपनी बीवी के साथ ताल्लुक कायम करता है या गैर फितरी तरीके से उसके साथ ताल्लुक कायम करता है, यानी कौमे लूत वाले अमल को करता है, या किसी काहिन के पास जाता है और गैब की खबरें उससे पूछता है, तो ऐसे लोग इस दीन के मुनकर हैं, इस दीन का उन्होंने इनकार किया। ये छोटी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है ये, इसको कोई ऐसे ना समझे कि हाँ आदमी आदमी के पास तो नहीं गया लेकिन अपनी बीवी के साथ वही काम कर रहा है, औरत या औरतें औरतों के पास समझे कि हर चीज इनके साथ जायज है। तो ये इतना बड़ा सख्त गुनाह है। इसी तरह एक और हदीस आती है कि 4 आदमी सुबह के वक्त अल्लाह के गजब में सुबह करते हैं और शाम को भी अल्लाह उनसे नाराज होता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू हुरैरा ने पूछा वो कौन है, तो आपने फरमाया वो मर्द जो औरतों की तरह बनते हैं और वो औरतें जो मर्दों की तरह बनती हैं, और आजकल तो खैर ट्रांसजेंडर्स हैं वो अपनी जेंडर ही चेंज करा लेते हैं, तो लेकिन वो नहीं भी कराते तो कई औरतों को मर्द बनने का बड़ा शौक होता है और कई मर्द जो है वो औरतें बन जाते हैं, वैसे ही मेकअप वैसे ही बाल वैसे ही करके, तो औरतों की तरह ही जिंदगी गुजारते हैं। नंबर 2 वो शख्स जो चौपाई के साथ बुरा फेल करता है, जानवर के साथ गंदा काम करे, और वो मर्द जो मर्द के साथ अपनी शहवत पूरी करता है, और इस चीज के अंदर आज बच्चों को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अल्लाह ताला माफ फरमाए और अल्लाह ताला इन कभी अमाल से महफूज रखे सबको, अल्लाह ताला माफ करे, तो इसका सोचेंगे क्या गुनाह होगा फिर। तो लेकिन इन नमत तौबा तो अल्लाह ही लिल्लदीन यामलून सुअ बिजहालतिन, ये वैसे एक बात हो रही कि अगर कोई भी गुनाह है वो एक इंसान को पता नहीं था, विरासत का था, या ये बीवी के साथ कोई ऐसा काम कर लिया, पीरियड्स में उसके साथ ताल्लुक कायम कर लिया, या और कोई भी काम था जो जिहालत के अंदर किया, तो एक तो है इल्मी जिहालत, इल्म नहीं था ना, अब जू ही पता चला उस वक्त तौबा की। नंबर 2 बात, एक और जिहालत भी होती है, वो जिहालत क्या होती है कि इंसान वाकई जाहिल हो जाता है ना, जब उसका दिमाग काम नहीं करता, अकल काम नहीं करती, समझ काम नहीं करती, वो कब होता है जब या तो कोई जज्बा उसके ऊपर इतना गालिब आ जाता है, मसलन गुस्सा इतना आ गया कि उसको यही नहीं पता मैं क्या कह रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, क्या कर रहा हूं, या कोई और शहवानी जज्बात ऐसे आ गए, इंसान फिसल गया गलती कर बैठा, या कोई और ऐसा जज्बा गम इतना आ गया इंसान के कोई उसके होश ही उड़ गए, उसको पता ही नहीं चला क्या बोल दिया, क्या किसी के साथ सलूक कर दिया, लेकिन जू ही होश आया फिर तौबा किए, थुम्मा यतूबूना मिन करीबिन, करीब से ही तौबा की, उलाएक यतूबुल्लाहु अलैहिम, अल्लाह का जिम्मा अल्लाह उनको माफ कर देता है। लेकिन एक होता है कोल्ड ब्लडेड क्राइम करना, यानी ऐसे इंसान सोच समझ के फिर उसके करके कि नहीं हाँ वैसे मैं तो अगर कर भी लूँ तो क्या फर्क पड़ता है, और भी तो दुनिया इतना करती है, अगर हमने सूद खा लिया तो क्या हो गया, अगर हमने सूद के ऊपर चीजें बना ली तो क्या हो गया, दुनिया जहान कर रही है तो इसमें कौन सी ऐसी बुरी बात है, लोग तो इससे भी बड़े बड़े काम करते हैं, हम कौन सा इतने, हम तो ये भी नहीं करते वो भी नहीं करते वो भी नहीं करते, लोग तो पता नहीं क्या क्या करते हैं ना, तो इस तरह कह के अपने आप को बड़ा मिस्कीन और मासूम बना के गुनाह करते जाना, वो है कोल्ड ब्लडेड करना, यानी आपको पता है आप जानते हैं फिर भी आप कर रहे हैं, ढीठ बन के कर रहे हैं कि कोई बात नहीं इतना तो नहीं बढ़ाना। और ये क्या जज्बात में आके एकदम इंसान स्पर ऑफ द मोमेंट में उस वक्त वो लोगों की मजलिस में बैठा हुआ था, उसको तो एकदम ही बस सारी ऐसी बातें होने लगी, उसने भी कुछ बोल दिया या उसने भी कोई एक्शन कर दिया, अब बाद में एकदम उस मजलिस से उठे और सोचा है ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या बातें बोल दी, उस वक्त सारी बातें कर रहे थे, मैंने भी विपतों के अंदर शुरू हो गई, मैंने भी ये झूठ बोल दिया, मैंने भी ये ऐसे कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। तो फिर जो ही उसको एहसास हुआ उसने फौरन तौबा की, तो अल्लाह ताला कहता अल्लाह कसम अल्लाह उसको माफ कर देता, वो कहना अल्लाह अलीमन हकीम, अल्लाह इल्म वाला और हिकमत वाला है। कहते ना सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं करते, तो ये अल्लाह ताला ने कहा कि इससे भूल हो गई ना, उसने जानबूझ के नहीं किया। देखिए एक बंदा ना जिंदगी ऐसे गुजारता है कि वो कहता है मैंने कुछ अल्लाह की नाराजगी का काम नहीं करना, मैंने नहीं करना, मैं अपने अंदर ना हमेशा उसके ये जज्बा होता है, लेकिन कभी वो भी तो फिसल ही सकता है ना, इंसान तो है ही, मर्द है या औरत है, कभी ऐसा हो सकता है, इसीलिए कहा गया ना एक मर्द और एक औरत कभी तन्हाई में ना बैठे, कभी तन्हा ना हो, कभी खलबत इख्तियार ना करें, तीसरा शैतान होता है, वो ऐसी ऐसी चीजें आदमी से बुलवा देगा या ऐसी दिमाग में औरत के लेकर आएगा जो पहले कभी नहीं आई थी। तो ये होता है कि इंसान ऐसे मौके ही ना दे, ऐसी ऐसी चीजों से भी इसीलिए बचने को कहा गया ना। अब हम कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है, उससे क्या होता है, इस्लाम में तो इतनी रिजिडिटी है, ये तो बड़ी बैकवर्ड बातें, ये तो आज की बातें, नहीं आपको नहीं पता इस्लाम आपको बचाना चाहता है कि जो कॉन्सिक्वेंसेस है ना उन तक ना आप पहुंचो, जो इसका नतीजा बाद में निकल सकता है उससे आपको बचाना चाहता है, इसलिए वो पहले ही सदे बाब कर देता है, सदे जराए कर देता है, बंद कर देता है वो रास्ते ही जिससे आप आगे किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो वो किसी से ज्यादा भलाई क्या हो सकती है यार। आप नहीं अपने बच्चों को कहती बेटा मेरे गंदे बच्चों के साथ ना बैठना, बेटा वो बच्चे जो नालायक है उनके साथ ना रहो, बेटा अच्छे बच्चों के साथ रहो, क्यों इससे क्या फर्क पड़ता है, आप उनको बुरा समझती हैं, आप बड़ी जजमेंटल हैं, आप बड़ी ये हैं, बच्चे कहते हैं ना, लेकिन आप क्या चाह रही होती है, आप बच्चे को बचा लें, अल्लाह भी इसी तरह चाहता है आप बच जाए। इन हम कहते हैं हाय पता नहीं हमारे पर कितनी पाबंदियां लगा दी, पर्दे का कह दिया, हमें ये कह दिया, आदमी के साथ अकेले ना बैठे, क्या सारे बुरे होते हैं, क्या सारे आदमियों की नजरें गलत होती, हमारे अंदर तो पता नहीं कितना तकवा है और बस नजरों का पर्दा होता है, ये होता है, पता नहीं हमने क्या क्या बातें बना दी, ये तो देखो वो रब कितना मेहरबान है तुम्हारे पर, तुम्हें बचाना चाहता है, तुम्हारी सेफ्टी चाहता है, औरतें पागल हुई हुई है उनके ऊपर, उनके पास इतने दलायल हैं, इतनी बातें हैं, जैसे कि पता नहीं हमें कोई इल्जाम दे दिया, इल्जाम नहीं दिया, आपको बचाया है, आदमियों को भी बचाया है ताकि वो भी ना गुनाहगार हो। तो इन बातों को समझे खुदा के लिए, अल्लाह आपका हमदर्द है, उसको आप उसका आप आपको आपको पर्दा करा के उसको क्या मिलना, आपके विरासत के ये सारे कवानीन इसलिए दे दिए, किसी के साथ ज्यादती थोड़ी है, किसको ज्यादा मिल गया किसको कम मिल गया उसकी क्या, उसको क्या फर्क पड़ता है, उसकी बातचीत में कौन सी फर्क पड़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगी कम हो जाएगी कुछ भी नहीं होगी, लेकिन ये आप लोगों की प्रोटेक्शन के लिए, ये आप लोगों की वेलबींग के लिए है कि माशरा एक सुकून के साथ रहे, ट्रस्ट तो करके देखो अल्लाह के ऊपर, कहते हैं अपने आप को मुसलमान लेकिन ट्रस्ट नहीं है अपने अल्लाह के ऊपर कि वो जो हमारे लिए करेगा ना वो उसमें खैर होगी, उसने जो हुक्म दिए हैं वो अच्छे ही हैं हमारे लिए, नहीं मैं अपने आप को ज्यादा बेहतर समझती हूँ, मुझे पता है कि मैंने कैसे बाहर निकलना है, मुझे पता है कि मैंने किस वक्त बाहर जाना है, मुझे पता है मैंने किसको कितना हिस्सा देना है, मुझे पता है कमाइयाँ क्या करनी है और कहाँ से करनी है और कहाँ से नहीं करनी, किस में प्रॉफिट ज्यादा है मुझे पता है, अल्लाह मुझे क्यों बताएगा। ये हमारे रवैये होते हैं इस्लाम के डिक्लेरेशन के बाद भी, मुसलमान अपने आप को कहलाने के बाद भी, तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, अल्लाह माफ कर देता है ऐसे लोगों को। देखें सुबहान अल्लाह, इंसान हर एक सोचता है ना मैंने कौन सा कोई गुनाह किया, मैं एक एक ये भी बहुत हमारे दिमाग में होता है, मैं क्या करती हूँ, मैं तो कुछ करती ही नहीं, दुनिया देखो क्या कर रही है, हम तो फिर भी नमाजें पढ़ते हैं, हमें नहीं पता, हम चाहे जितना मर्जी कितना अपने आप को नेक समझ लें, एक तो ये बात है कोई इंसान किसी गुनाह से पाक नहीं, आप सरसर ने फरमाया ना सारे बनी आदम जो है ना खताऊन है, कुल्लू बनी आदम खताऊन, सब आदम के सारे बच्चे, तो हम कहते हैं हम इतने मासूम हैं हम क्या करते हैं, हालांकि आपको पता है अगर हम कोई कबीरा गुनाह नहीं भी करते लेकिन हर नेमत जो हमारे पास है ना इसका एक हक है, वो नेमतों का हक हम नहीं अदा कर पाते, चाहे वो हमारी आंखें हैं, चाहे कान है, चाहे जुबान है, चाहे जिस्म है, चाहे हमसाए हैं, चाहे रिश्तेदार हैं, चाहे औलाद है, चाहे शोहर है, चाहे घर है, चाहे और जो माल आपके पास है या और कमोडिटीज आपके पास है, जो भी आपके पास है, जितनी हर नेमत समझ ले आपके पास आती है ना, तो वो नेमत एक हिसाब किताब के साथ आती है कि इसका हिसाब होना है, समझ जाया करें। नेमत मिली है ना, हिसाब साथ ही क्लिक होना चाहिए दिमाग में, नेमत हिसाब। तुम मला तुस अलुन नयोमा इदिन अनिन नाइम, अल्लाह ताला कहता है कैसे जाओगे तुम, नेमते खर्च करके यूज करके तुम समझते कोई नहीं हिसाब किताब, सब अल्लाह ने पूछना। तो इन नेमतों का हिसाब है, इनमें हमसे कमियां बेशियां होती हैं, चाहे हमारी अपनी औलादें ही क्यों ना हो, हमें उनके साथ वैसे जैसे हक होना चाहिए उस तरह से नहीं कर पाते, एक की तरफ एक का हक देने लगते हैं, दूसरे का रह जाता है, बच्चों की तरफ तो बच्चों ज्यादा देते हैं, शोहर का हक रह जाता है, शोहर की तरफ देते हैं, उधर का रह जाता है, किसी का कभी किसी का कभी किसी का, एक को शिकायत होती कभी दूसरे को होती। तो ये सोचें, ये हकूक की पूछ होनी है, फिर नमाजें पढ़ते हैं वो नमाजें निकम्मी, रोजा रखा वो निकम्मा, इबादत में किसी के अंदर कोई भी इखलास नहीं होता, किसी को देते हैं तो कभी बाद में ताना मार देते हैं, कभी एहसान जता देते हैं उसको, किधर किधर हम देखें तो सही कि कितनी कमियां रहती हैं। इसी तरह बाज लोग बिल्कुल ही दूसरी तरफ होते हैं, वो तो हमें अल्लाह ने माफी नहीं करना, ये नहीं होना, हमें तो हमारा तो कुछ है ही नहीं, हालांकि आपको पता है अल्लाह ताला हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जब तौबा करता है ना, तो वो ऐसे हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं, सुभान अल्लाह, किया ही नहीं। आप देखें, एक कपड़ा गंदा होता है ना, कपड़े पे धब्बा लग जाए तो क्या होता है उसके बाद, आप धो भी देना निशान रहता है, अल्लाह ताला कहता है निशान भी मिटा दूंगा, ऐसे होगा जैसे किया ही नहीं। और तो और सुभान अल्लाह, उससे भी बढ़ के सुन ले, सूरह फुरकान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन, जो ईमान लाए, तौबा करे, अमल साले करे, उसके बाद अपनी इसलाह कर ले, तो अल्लाह ताला तो गुनाहों को भी नेकियों में बदल देता है। जैसे कयामत के दिन एक बंदा आएगा तो वो कहेगा, बड़ा डर रहा होगा, अल्लाह ताला जब उसके छोटे छोटे गुनाह बताएगा, कहेगा हाँ मैंने ये किया ये किया ये किया, अल्लाह ताला कहेगा मैंने तेरे से सारे गुनाह नेकियों में बदल दिए, तो वो ना आगे से कहेगा या अल्लाह अभी तो मेरे बड़े बड़े भी पड़े हुए हैं और भी पड़े हुए हैं, क्या था कि अल्लाह ताला वो भी उसको नेकियों में बदल दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े ये फरमाते हुए कि वो उस वक्त कहेगा अल्लाह वो भी मेरे हैं, खुद ही बताएगा, फिर पहले डर रहा था। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह तो ऐसा है, अल्लाह ताला फरमाता है ना कि जब अल्लाह ताला ने सूरह जुमर में फरमाया कुल या इबादी अल्लदीन असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरे बंदो जो अपने जानों पे जुल्म कर चुके हो, अपने अल्लाह की रहमत से मायूस क्यों होते हो, इन अल्लाह यग़फिरु ज़ुनूबा जमीअ, अल्लाह तो सारे ही गुनाह माफ कर देते, उम्र भर के गुनाह अल्लाह माफ कर सकता है, उसने एक कुन कहना है और वो सब सियाकारियां मिट सकती हैं। तो ऐसे रहमान और रहीम अल्लाह से तुम मायूस होते हो और कहते नहीं अब नहीं, हम खुदकुशी कर लें, कोई कहता मैं कुछ कर लूं, कोई कहता नहीं अब नहीं मेरा कुछ हो सकता, अब नहीं ये धुल सकते, किस तरह क्यों जाते हो अल्लाह से दूर, शैतान मायूसी डाल के इंसान को और अल्लाह से दूर करता है कि अब तुमसे इतने गुनाह हो ना, अब नहीं, अब तुम्हारा कुछ नहीं रह जाएगा, अब तो तुम बदनाम हो ही गए हो, तो नहीं वापिस पलटो। हाँ मगर कुछ लोग ऐसे, उनकी तौबा नहीं कबूल होती, वलैसत तौबतु लिल्लदीन यअमलून सय्यिआत, ऐसे लोग में नहीं उनकी तौबा कबूल होती जो अमल करते हैं बुरे, और बुरे करते जाते हत्ता इदा हदर अहदहुमुल मौत, यहाँ तक कि जब हाजिर होती है उनमें से किसी एक के पास मौत, काला वो कहता है इन्नी तुबतुल आन, अब मैं तौबा करता हूँ, जैसे बिल्कुल फिरौन ने की थी, जब उसको पता चल गया मौत नजर आने लग गई तो फिर तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है, तो कहता अब मैं ईमान लाता हूँ, अल्लाह ताला ने फरमाया अल आन, अब लाते तुम ईमान। तो ये जो होता है ना एक जिंदगी में, ये भी एक एटीट्यूड होता है कि अच्छा तौबा कर लेंगे ना, अभी क्या, अभी तो मेरी अपनी कौन सी इतनी उम्र हुई है, हज पे जाएंगे फिर तौबा कर लेंगे, एक दफा ये शादियां हो जाएं, मैंने शादियों के ऊपर खुल के डांस करना है, उसके बाद मैं तौबा करूंगी, और मैंने अभी पर्दा नहीं करना, अभी नहीं मैंने स्कार्फ करना, बस मेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, शादी होगी फिर करूंगी, अच्छा अब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर मैं ये काम शुरू, नहीं तौबा आज अभी, क्योंकि आपको नहीं पता किस वक्त आपको मौत आ जानी है, किस वक्त कौन से कॉर्नर पे मौत खड़ी, क्या पता रात को सोए तो सुबह उठे ही ना। अफसर सर ने दुआ जो सिखाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अहयाना बादा मा मातन, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे जिंदगी दी मौत के बाद ही, तो आप मौत के करीब जाते हैं रोज, कोई पता नहीं उठे ही ना। तो फिर क्या होगा अगर उठे ही ना, तो किसको गारंटी है कि वो उठ जाएगा? तो इसलिए इतनी लंबी लंबी प्लानिंग्स ना करें। अब कई लोग कहते हैं हम बुढ़ापे पे हज पे जाएंगे ताकि उस वक्त हमारे गुनाह माफ हो जाए, तो यानी अभी नहीं हमें गुनाह माफ कराने की, कि हम अभी गुनाह छोड़े तो उस वक्त गुनाह माफ कराऊंगी। तो आपको क्या गारंटी है कि आपको बुढ़ापा आएगा? किसके पास है ये सिक्योरिटी? तो क्यों ऐसा करते हो कि ऐसा रिस्क लो कि उस वक्त जब मौत का फरिश्ता आ जाए तब कहो हाय हाय अब मैंने तौबा की, अब मैंने तौबा की, अब बस बस। वो तो देखें वो कैसी तौबा है, वो तो चोर के सामने भी जब पुलिस आके खड़ी हो जाती है, उसके सामने खड़ी हो गई, उसको पकड़ लिया, तो वो तब वो भी कहता है आए मैंने मैंने अब तौबा की, अब नहीं कभी करूंगा, अब एक दफा माफ कर दो। इसका क्या है फिर? ये तो अब उस डर से की ना तुमने, ये नहीं तुम्हें हुआ कि तुम अल्लाह की नाराजगी से बचते हुए जिंदगी के अंदर तौबा करते कि नहीं, अब जिस वक्त मौत को देख लिया। देखें दो चीजें जब आ जाएंगी ना तब तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है, एक वो जब ये हलक के अंदर आ जाए जान तब तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है, नरखरे में आ जाता है। देखें आप खरखर करते हैं ना लोग जब उनको मौत आ रही थी, तो मौत की इस वक्त मतलब आसार आगे के नजर आने शुरू हो जाते हैं, अब पता चल गया कि बस मैं गया, अब नहीं बचना मैंने, तब तौबा नहीं कबूल होती। दूसरा जिस वक्त सूरज मगरिब से तुलू हो जाए तो तौबा का दरवाजा बंद हो गया। ठीक है वो उस वक्त कह रहा है तुझे अब याद आया, और इसी तरह हम डिले करते चले जाते हैं। और देखें अल्लाह तो हमें माफ फरमा दे, लेकिन ना ये जो ये ना कभी सोचना कि बुढ़ापे में जाके तौबा कर लूंगा, बाज दफा लोगों को बूढ़े होके भी तौफीक नहीं मिलती, बुढ़ापा भी आ जाता है तौफीक नहीं मिलती, उनके वो काम उनके वो जो जिन बदअमालियों में पड़े होते हैं वो नहीं छूटते। आपने पक्के कर लिए हैं मैं उन आदतों को, वो कहाँ छूटेंगी? तो हर कोई तो नहीं बूढ़ा होके नेक हो जाता अगर किसी को बुढ़ापा मिल भी गया तो। और कितनी जवानों की आप मौतें देखते हो, पता नहीं कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो कब्रिस्तानों में पड़े हुए, जिन्होंने सोचा होगा हम बस आखिरी दिन तौबा कर लेंगे, हम बस तौबा कर लेंगे, और पड़ी उन्होंने भी प्लानिंग की होगी ना मगर उनको मौका नहीं मिला। अब मैं सोचती हूँ हम में से हर एक के पास कोई मसले होंगे, कोई ना कोई परेशानी होंगी, जितने भी हम बैठे हुए हैं किसी ना किसी उलझन में होंगे, लेकिन ना हम फिर भी बहुत खुशकिस्मत हैं, बहुत खुशकिस्मत हैं हम। और हमारी आप सोचते होंगे नहीं नहीं हम आप मैं तो बड़ी बदनसीब हूँ, मेरा तो ये है वो है, नहीं आप भी बहुत खुशकिस्मत है। अगर इस वक्त आपको मेरी आवाज आ रही है ना तो आप बहुत खुशकिस्मत है क्योंकि आप जिंदा हैं, हर जिंदा की तौबा कबूल हो सकती है। मैं और आप अभी मरे नहीं है, हमारे पास चांस है, चाहे रो के मनाए अल्लाह को, चाहे जिदें करके मनाए, चाहे कोई कुछ फरमा बरदारी करें, कोई सदका खैरात करें, उसकी पसंद के कोई काम करें, कुछ भी करके। देखा नहीं बच्चे कैसे मनाते हैं, कि देखा नहीं कैसे रूठे को मनाया जाता है, मनाए अपने अल्लाह को ऐसे, वी हैव अ चांस अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है कि वी हैव अ चांस। करोड़ों अरबों खरबों लोग उनके चांस खत्म हो चुके हैं, लेकिन मेरे और आपके पास है, हम कितने खुशकिस्मत हैं, इस चांस को अवेल कर लें, हमेशा नहीं रहेगा, हमेशा हम तौबा नहीं कर सकेंगे, तो अल्लाह हमें माफ कर दे। इससे पहले कि मौत आए, वला वल्लदीन यमूतून वहम कुफार, और ना ही उन लोगों के लिए तौबा है कि जो काफिर हैं, यानी जो कुफर के ऊपर मर जाते हैं, मरते दम तक काफिर रहते हैं, वो वहां जाके अगर कहते हैं कि अल्लाह अब हमने देख लिया, अब हमने मान लिया, या फरिश्तों को देख के सोचते हैं कि ओ ये हम क्या कर बैठे, अब वो तौबा करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया फिरौन ने करा था, नो नो वे, मलाइका अदना लहुम अज़ाब अलीम, इनके लिए दर्दनाक अजाब है। और तौबा जो है ना, ये तौबा होती है अमल को बदलना, तौबा की चार शरायत हैं, ये पहली बात ये कि निदावत हो, पशेमानी हो, क्या कर लिया मैंने, नंबर टू बात ये कि इंसान उस गुनाह को छोड़ दे, ये नहीं कि गुनाह भी करते जाए और तौबा 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 तौबा, नंबर थ्री आइंदा ना करने का पुख्ता अजम करे, और नंबर फोर है कि अगर किसी यानी हकुकुल इबाद में है वो जो ज्यादती की भी है तो उस बंदे को उसका हक दे दे। तो अमल का बदलना जरूरी है तौबा के लिए, ऐसे नहीं है कि तौबा 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 करते रहना बस। जब अल्लाह ताला ने इबलीस को लानत नाजिल फरमाई थी तो उसने मोहलत मांगी थी और कहा था तेरी इज्जत की कसम और तेरे जलाल की कसम, मैं इब्ने आदम के जिस्म में जब तक रूह रहेगी मैं उसके दिल से नहीं निकलूंगा, ये इतना खबीस है कि ये निकलता नहीं है। अल्लाह अज्जा व जल ने फरमाया मुझे भी मेरी इज्जत की और मेरे जलाल की कसम है, मैं भी जब तक इसमें रूह रहेगी इसकी तौबा कबूल करता ही रहूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी है रूह। يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها। ये आयत, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि क्या कल्चर था उस जमाने में लोगों का, कि जब कोई आदमी मरता था तो उसके जो वारिस होते थे, मतलब उसके बेटे हैं, वो अब आदमियों की इतनी बीवियां होती थी, तीन चार बीवियां अगर, तो वो सारे वो जो सारी अपनी माँ को छोड़ के, अपनी माँ को छोड़ के जो और औरतें होती थी उनको अपनी विरासत ही समझ लेते थे कि ये हमारी मिल्कियत है, और कभी तो उनके साथ खुद ही शादी कर लेते थे यानी अपनी सुतेली माँ से, कभी उनको बिठार के रखते थे कि जहां पे हमारा दिल करेगा, जहां पे इसका बड़ा मेहर मिलेगा वहां पे हम इसकी शादी करेंगे, और कभी शादी करते ही नहीं थे कि इसकी जायदाद जो इसको मिली हुई है हमारे बाप की विरासत में से, या इसके पास जितना माल है ये तो कहीं और चला जाएगा, तो उसके माल को जैसे विरासत में और मैयत के माल की विरासत समझते थे ना, इस तरह उसकी बीवियों को भी विरासत समझते थे कि ये भी हमारी विरासत है, तो उसको जाने नहीं देते, तो वो अपने घर नहीं जा सकती थी कि अपने माँ बाप के घर चली जाए। और ये भी एक रस्म थी कि सर पे जिसने कपड़ा डाल दिया बस उसकी हो गई, अब वो जो मर्जी करता रहे इसके साथ, चाहे शादी करे चाहे गई खुद शादी कर ले कहीं और कर ले, अगर बदसूरत होती तो उसको बिठा के रखता कि मर जाएगी तो इसका माल ले लूंगा, खूबसूरत होती तो खुद ही शादी कर लेता, उसका कोई राइट नहीं था। जो हाँ भाग के चली जाती थी अपने माँ बाप के घर वो बच जाती थी। तो फरमाया नहीं तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए हराल नहीं है कि तुम उनके वारिस बन के बैठ जाओ जबरदस्ती, जबकि तुम्हारा कोई हक नहीं है। वला तअदुलूहुन्ना लितज़हबू बिबादी मा आतैतुमुहुन्ना इल्ला अन यातीना बिफाहिशतिन मुबय्यिना। ऐसे नहीं है कि तुम रोको उनको या मजबूर करो उनको ताकि तुम ले जाओ बाज उसमें से जो तुमने दिया। अब ये शोहरों को भी कहा जा सकता है और वारसों को भी, वारसों का कैसे कि एक आदमी मर गया उसके वो अपनी चार बीवियां मसलन छोड़ गया, अब वो जो बेटे हैं उसके उन्होंने कहा कि हम इन इनको मजबूर करके रखें, इनको इतना दबा के, इनको ऐसा टॉर्चर करें, इनको ऐसा प्रेशराइज करें, इतना तंग करें ना कि ये जो इनके पास माल है वो हमें दे दें ताकि इनकी जान छूट जाए हमारे से। ठीक है, अब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि यहाँ पे शोहर को कहा जा रहा हो कि शोहर है उसने अच्छे दिनों में बीवी के नाम बड़ा कुछ लगा देते हैं लोग, जब शादी शुरू शुरू की हुई होती है ये जायदाद तेरे नाम, ये बाद में जब अनबन हुई तो अब कहता है मैं इसे निकलवाऊं कैसे, अब मेरा दिल करता है इसको तलाक दे दूं, इसको इसके घर भेज दूं, बस खत्म करूं ये सारा, लेकिन मैंने तो इसके नाम इतना कुछ कर दिया हुआ तो अब कैसे लूं, तो वो उसको इतना तंग करता है कि खुद ही तलाक मांगेगी तो फिर मैं कहूंगा कि पहले वो वापस करो तो फिर देता हूँ। ये तरीके आजकल भी चलते हैं ना इस तरह के, इतना प्रेशराइज किया जाता है कि जा अपने माँ बाप के घर से लेकर आ उनसे मांग जाके, तो यहाँ पे तो ये है कि जो तुमने दिया है वो उसमें से बाज भी नहीं ले सकते, चाहे उसको कितना कुछ क्यों नहीं दे दिया लेकिन उसमें से लेना नहीं है, तो उसको ऐसे मत तंग करो कि वो मजबूर हो के तुम्हें कुछ दे दे ताकि अपनी जान छुटाए। इल्ला ही आती ना बिफाहिशत मुबैना, सिवाय इसके कि हाँ वो कोई जिनाकार हो, कोई उस औरत ने ऐसा कोई गलत काम किया है, बाज तो बोहतान ही बांध देते हैं, लेकिन अगर कोई किसी ने फहाशी खुली फहाशी की है, कोई ऐसी सूरत पता चल गई है कि इसने वाकई ऐसा किया, फिर हाँ आदमी उसको मजबूर कर सकता है कि तुम मेरा वो माल वापस करो जो मैंने तुम्हारे नाम करा भाई सब कुछ, तो फिर मैं तुम्हें तलाक दूंगा। और फिर कितनी बड़ी बात, मैं कहती हूँ इसको हाईलाइट कर लें आप, अपने लिए नहीं अपने बेटों को समझाने के लिए, भाइयों को समझाने के लिए। ठीक है, वह आशीरू हुन्ना बिल मारूफ, हुन्ना की जमीर किस तरफ जाती, जमा मोनस, आदमियों को कहा जा रहा है तुम इनके साथ, किन के साथ, इन औरतों के साथ जिंदगी बसर करो भले तरीके के साथ, ऐसे तरीके के साथ जो हर कोई कहे कि वाकई बड़ा अच्छे अच्छे तरीके के साथ इसने बीवी को रखा हुआ, यानी ऐसे नहीं कि छोटी छोटी बातों पे उसे नाराजगियां, इतने इतने दिन बात नहीं करनी, उसके ऊपर शक करना, उसके साथ हसद कुछ शुरू कर देना, उसको उसके माँ बाप से मिलने नहीं देना, उसको तंग करना, सताना उसको, खर्चे में उसको तंग करके रख देना, चाहे हाथ खुद का कितना भी खुला है, या उसको ऐसी अजियतें कोई देना, मेंटल या फिजिकल कोई अब्यूज करना, इस सब कुछ खत्म कर दिया जब कह दिया आशीरू मुन्ना बिल मारूफ। बाज आदमी ऐसे होते हैं कि वो औरतों की जिंदगी हराम करके रख देते हैं, उनको मेंटली टॉर्चर कर करके। अब उनका कोई काम उनको पसंद नहीं आता, वो कुछ भी कर लें वो उनको अच्छा नहीं लगता, वो ऐब ही निकालते रहते हैं, कहते रहते हैं कैसे इसकी कोई ऐसी चीज बताई जाए कि ये इस वक्त खुश ना हो सके। किसी का मुझे पता चला, एक बात मेरे तक पहुंची थी किसी के थ्रू, कि उस आदमी ने कहा कि मेरी बीवी जो है ना, जो भी करती है ना, मैं कहता हूँ ये बहुत सर पे चढ़ जाएगी, तो जब ये मसलन ऑमलेट बना के लाएगी तो मैं कहता हूँ फ्राई होता तो बड़ा मजा आता, फ्राई बना के लाएगी तो कहेगा ऑमलेट होता तो बड़ा मजा आता, ये चीज करेगी तो कहेगा ऐसे होता ना तो फिर अच्छा होता, कि वो कभी खुश ना हो सके, कभी खुश ना हो सकते, यानी उसको कभी ये सेटिस्फेक्शन ना मिले कि मैंने कुछ अच्छा कर दिया, तो कहता है ऐसे करके मैं सीधा करके रखता हूँ। ये आशीरू हुन्ना बिल मारूफ नहीं है। हमारे नबी अलैहि सलातो सलाम की जिंदगी देखिए, कितनी इतनी खूबसूरत जिंदगी, वाकई क्यों ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी बीवियां होते हुए भी, जब आपकी वफात हुई थी 9 बीवियां थी, सारी की सारी जान छिड़कती थी, ऐसे ही नहीं होता, ये ऐसे छोटी बात नहीं, आसान बात नहीं है। हाँ, और बीवी को तो सारे कच्चे छट्टे पता होते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ बैठते थे, उनके साथ उनको खुश करते थे, उनके दिल को खुश करते थे, उनसे हंसी दिल लगी की बातें करते थे, उनके दिल समझ ले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुट्ठी में रहते थे, यानी इतने, तो हर एक बस चाहती थी कि मेरे पास आए, और फिर कुशादा दिली के साथ उनके साथ रहते थे, ये नहीं कि हर वक्त घर में घुसे हैं तो बस एक मैं तो बड़ा नेक आदमी हूं और बस झिड़कना और डांटना और जैसे कोई शेर घर के अंदर आ गया, तो इतनी भी हैबतनाक शख्सियत बनने की क्या जरूरत है। नबी अलैहिस्सलाम तो ऐसे नहीं थे, उनसे ज्यादा नेक कौन हो सकता है। आज आदमी समझते जो दीन की तरफ आ जाते, समझते हैबत जरा होनी चाहिए, रोब होना चाहिए, तो बस ऐसा करो कि बस थर थर कांपने लगे, घर वाले भागने शुरू हो जाए मेरे आते ही, और वो बस मेरी सर्विस में आगे लग जाए। नहीं, आपसे सर में ऐसे नहीं थे, खुश तभी फरमाते थे, ऐसी बातें करते थे, उम्महात हंस पड़ती थी, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला के साथ उनका दिल लगाने के लिए दौड़ भी लगाई थी, रेस भी लगा ली थी। अब बंदा कहे कि हाँ नहीं, ऐसी क्या बात हुई, ये तो फिर वो दीन पे, दीन के जो वो होते हैं ना, वो क्या सोचने शुरू हो जाते हैं कि जब हम दीन पे हैं तो शायद ये काम अगर हम करेंगे तो शायद हमारा हमारा रोब जाता रहेगा, तो ऐसा नहीं है। इंसान ये सोचे कि जो काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हैं ना, जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे हैं, उस तरह से अगर रहेगा तो उसमें खैर है, और वही आइडियल जिंदगी है जो अल्लाह ताला ने बताई है। यहाँ पे देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम को अपनी बीवियों के साथ बैठते थे, जिसके घर की बारी होती थी वहां पे सारी जमा हो जाती थी, सबके साथ बातचीत करते थे, सबके घरों में चक्कर लगाते थे, फिर रात का, बाज दफा ऐसा भी होता था रात का खाना सारे इकट्ठी खाती थी, और इधर उधर की बातें भी करते थे, ऐसा नहीं होता था कि उनको लेक्चर देते रहे, हमेशा उनको लेक्चर नहीं देते रहते थे कि बस आप सोचते होंगे कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कोई बात और करते ही नहीं होंगे, उनको लेक्चर सुनाते रहते होंगे। तो ये हमें समझना चाहिए कि जो आइडियल लाइफ है ना वो है, अगर सीखना है तो उनसे सीखें कि कैसे अच्छी जिंदगी गुजारनी है। और फरमाया फा इन करे तो मुंह हुन्ना, अब मुझे बताएं दुनिया का कौन सा कानून या कौन सा और कोई मजहब होगा जो ऐसी तालीम दे सकता है जो यहाँ पे दी गई, कि आप कहते हैं कि औरतों को नहीं हकूक दिए इस्लाम ने, पता नहीं औरतों के साथ कितनी ज्यादतियां हो गई। तो फरमाया अगर तुम नापसंद भी करते हो ना उनको, एक होती है ना जो जो दिल को भाती है, जो बीवी ऐसी है कि वो अच्छी लगती है, मगर हो सकता है फिर कोई ऐसे हालात हो गए हो कि अब वो पसंद नहीं आती किसी भी वजह से, हो सकता है उसकी जुबान ऐसी हो सकता है उस वो अब खूबसूरत ना रह गई हो सकता है उस की कोई ऐसी बात हो जो पसंद ना आई हो, बाज दफा औरतें अपने किसी ऐसी पीरियड्स या प्रेगनेंसीज के अंदर उनके मूड स्विंग्स होते हैं, उसकी वजह से चिड़चिड़ी हो जाती हैं। बाज दफा और कोई ऐसे हालात हो सकते हैं कि बस आदमी को कहता है कि नहीं, मुझे मुझे नहीं ये पसंद है। तो अल्लाह ताला समझा रहा है ऐसे आदमी को, सोचें, अल्लाह समझाता है उसको, कहता है फाअसा अन तकरहु शैअ, हो सकता है तुम्हें कोई उसकी बात ना पसंद हो। वयजअलल्लाहु फीहि खैरन कथीरा, किसी के माँ बाप भी उसके क्या हमदर्द होंगे जो अपने दामाद को ऐसे समझा सकेंगे, जो अल्लाह ने आदमी को समझाया कि अल्लाह माँ बाप से भी ज्यादा हमदर्द है, कि अल्लाह ने समझाया कि देखो तुम्हें उसकी अगर एक बात ना पसंद हो, तुम्हें क्या पता इसके अंदर अल्लाह कितनी खैर निकाल दे। और आसा का लफ्ज जब अल्लाह के लिए आता है ना, तो यकीनन का समझ ले, क्योंकि अल्लाह से ये नहीं कि उम्मीद है या हो सकता है, अल्लाह ने जो करना है वो उसको कोई हालात नहीं बदल सकते, वो यकीनन समझ ले कि अल्लाह उसमें से कोई खैर निकाल दे। क्या खैर निकल सकती है? हो सकता है आज नहीं वो अच्छी लगती, लेकिन कल को तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा बुढ़ापा आ जाए, कोई ऐसी मोहताजी आ जाए, यही औरत तुम्हारी इतनी खिदमत करे। हो सकता है कि कल को अल्लाह इससे औलाद दे दे ऐसी जो कि तुम्हारी इतनी नेकियां बढ़ाने वाली हो। हो सकता है तुम्हारी आखरत में ये औरत तुम्हारे लिए आखरत में नेकियां बढ़ाने का सबब बन जाए। तो एक वो थे ना, एक आलिम थे बहुत बड़े, तो उनका बेटा इतना ज्यादा फरमा बरदार था, तो उन्होंने जब वो बेटा आया और उसने अपने वालिद के सामने जैसे फरमा बरदारी का इजहार किया, तो उनके शागिर्द हैरान रह गए। तो उन्होंने पूछा अपने शागिर्दों से कि ये तुम इतने हैरान हो रहे हो इसकी फरमा बरदारी देख के, तो जानते हो इसकी मां के साथ मैंने 30 साल सबर किया कि 30 साल में उसने कभी कोई अच्छी बात नहीं की। एक और बहुत बड़े, ये मस्जिद कुबा के इमाम थे जिन्होंने ये वाक्या सुनाया था, कि एक बहुत बड़े मुहदिस थे, तो वो उनके इतने शागिर्द थे, लेकिन उनकी बीवी इतनी बदजुबान थी, इतनी उनके साथ बुरा सलूक करती थी और उनको ऐसी बातें सुनाती थी, लेकिन वो सबर करते थे। एक दिन उन्होंने बीवी से कहा कि तुम मेरे साथ आओ तो सही, तुम देखो मेरी कितनी इज्जत है, लोग मेरी कितना मेरा एहतराम करते हैं, और तुम मेरे साथ ऐसे करते हो। तो वो उसको लेके गए, जब वहां पे लेके गए तो उसने देखा कि भाई इतना बड़ा मजमा है और कैसे इनकी इज्जत है। तो वापस आकर उन्होंने पूछा कि तुम्हें कैसा लगा, तो कहने लगी मैंने देखा कि वो जितने लोग थे ना सब में खुशू था एक सिवाय तेरे, तेरे अंदर कोई खुदा खौफ ही नहीं थी। यानी बाज ऐसी भी औरतें होती हैं, तो लेकिन वो सबर करते थे उनके साथ। बहुत बहुत बड़े आप मुहद्दिसीन का सुनेंगे कि किस तरह उन उलमा ने सबर किया अपनी बीवियों के साथ। तो अल्लाह ताला फरमाता है अगर तुम्हें एक इनकी कोई बात पसंद आती है ना, तुम्हें नहीं पता कि क्या इसके अंदर खैर हो, क्या अल्लाह खैर निकाल दे इसके अंदर से। और कोई भी इंसान इस दुनिया में ना टोटली 100% बुरा है, ना टोटली 100% अच्छा है। हर एक के अंदर खूबियां भी हैं, खामियां भी। किसी में खामियां ज्यादा होती हैं, खूबियां कम होती हैं, किसी में खूबियां ज्यादा होती हैं। तो तुम्हें जो बात ना पसंद आ रही हो उसको इग्नोर करके तुम वो बात देख लो जो उसके अंदर अच्छी है। अगर उसकी शक्लो सूरत नहीं अच्छी लगती तो उसके अंदर कोई और गुण ऐसा होगा, मसलन बच्चों का बड़ा ख्याल रखती, तुम्हारी औलाद की बड़ी अच्छी तरबियत करे। अगर वो घर का अच्छा ख्याल नहीं रखती तो हो सकता है बड़ी खूबसूरत हो, हसीन। बाज कहते हैं इसमें तो कुछ भी नहीं, जब हमें असल में कोई बुरा लगने लगता है ना तो उसकी अच्छी बात भी बुरी लगती है, तो फिर हम कहते हैं सारी चीजों के ऊपर ही पानी फेर देते हैं, कहते हैं सारा कुछ ही बुरा है इसके अंदर। हालांकि ऐसा नहीं होता, वो इंसान की नजर होती है जिसके अंदर आपको दूसरा अच्छा भी लगता है और बुरा भी लगता है। तो अपनी नजर से उसकी खूबियों को देखने की कोशिश करें। औरतों को भी मैं कहती हूँ कि वो भी मर्दों के अंदर, अपने मर्दों के अंदर ऐसे ना कहेंगे तो ये तुम्हारे कुछ खैर है ही नहीं इसमें, नहीं होगी जरूर, आप फोकस करेंगी तो आपको पता चलेगा, कोई ना कोई जरूर होगी चीज। तो इतनी प्यारी बात, इतनी अच्छी बात जो मर्दों को कही, मर्दों को क्यों कहा जा रहा है, या औरतों को नहीं ऐसे करना? असल में घर की जो होती है ना इंतजाम, घर का सरबरा आदमी है, जिम्मेदार आदमी है, तो उसको कहा गया तूने चलाना है, तूने अच्छा रखना है घर के माहौल को, तूने सही रखना है ये सारा निजाम, उसको पहले कहा जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं कि औरत जो खुली छुट्टी वो जो मर्जी करती रहे, नहीं, तो इसलिए उसको कहा गया। तो ये वाली आयत भी किसी आदमी को पता है, वह आशीरुहुन्ना बिल मारूफ फ इन करे तो मुहुन्ना फआसा अन तकरहू शैअन वयजअलल्लाहु फीहि खैरन कसीरा, ये भी बात पता है, या सिर्फ यही पता कि चार बीवियां कर सकते हैं, उन चारों के साथ आशीरुहुन्ना बिल मारूफ होना चाहिए, उन सारों के साथ ये होना चाहिए कि अगर तुम्हें कोई चीज ना पसंद हो तो कोई खैर भी होगी उनमें, वो भी देख लिया। वइन अरद तुम इस्तिब्दाल ज़ौजिन मकाना ज़ौजिन, अच्छा अगर तुमने ये इरादा कर ही लिया कि नहीं मैंने इसको रखना ही नहीं है, बस मेरे दिल से ये उतर गई है, अब मैं नहीं इसके साथ रह सकता, तो अब क्या कहा गया आदमी को? वह आते तुम एहदा हुन्ना किन्तारन, और चाहे तुमने छोटा मोटा तो सोच छोड़े, चाहे तुमने इसको ढेरों माल भी दे दिया हो, इसके नाम किया हुआ, जायदाद भी कर दिया, ये घर भी इसके नाम है, अब हम जाएंगे कहाँ अगर इसको तलाक दे दी? अब मैंने इसको बदलना तो है, मैंने इसको बदल के मतलब यह है कि इसको तलाक देनी है और दूसरी लेकर आनी है, लेकिन क्या करूं मैं, इसको तो मैंने बड़ा कुछ दिया हुआ, तो अपने साथ ले जाएगी? तो फरमाया फला ताखुदू मिन्हु शैआ, हाँ इसमें से आप तुम कुछ नहीं वापिस ले सकते, फिर अगर उन तुमने उसको छोड़ना है तो फिर वो लेके जाएगी, वैसे भी तोहफा लेना वापस मना है, आपको मैंने बताया था ना कि तोहफा वापस लेना ऐसे ही है जैसे कुत्ता अपनी कै चाट ले, तो कोई लोग हैं जो पसंद करते हैं इस तरह, तो फिर वो ले लिया करें तोहफे वापस, और जिसको ये नहीं पसंद है तो वो ये हरगिज ना करे, इतना गंदा अमल इसको बताया गया। तो यहाँ पे खास तौर पे मेहर की बात है कि मेहर में अगर तुमने खजाने भी दिए हों, वैसे तो मेहर की कोई मैंने आपको बताया था लिमिट नहीं है कि कम से कम भी दे सकते ज्यादा से ज्यादा भी दे सकते, और यहां से पता चलता है खजाने ढेरों भी दे सकते हैं, अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो ढेरों भी दे सकता है। तो उमर ने एक दफा इस पे पाबंदी लगाने की कोशिश की तो किसी औरत ने उठ के कहा ये आयत नहीं आपने पढ़ी, ये कुरान के अंदर ये आयत है कि अगर तुमने उसको खजाने भी दिए हो तो तुम वापस नहीं ले सकते, तो है उमर तुम कहां से होते हो इस चीज पे पाबंदी लगाने वाले? तो उस वक्त उमर ने कहा था कि यहाँ पे तो सारे ही समझदार हैं उमर से ज्यादा, तो इसलिए खजानों को भी मेहर में काउंट किया जा, यानी इतना भी मेहर दिया जा सकता है। अता खुजूना हो बोहतानम व इस्म मुबीना, अल्लाह ताला कहता है क्या तुम वापस लोगे बोहतान लगा के कि ये कोई फहाशी बदकारी करने वाली औरत है, ये कह के इसके ऊपर इल्जाम लगा के वापस लेने की कोशिश करोगे, वह इस्म मुबीना और खुला गुनाह करके, ये बड़ा सख्त गुनाह होगा अगर तुम ऐसा करते हो कि तुम उनको सिर्फ इसलिए तंग करते हो कि हमें वापस दे के जाएंगे, ले के ना जा सके हमारे घर से, तो पहले यहां तो सोच समझ के दे, अगर आप दे ही दिया तो फिर इतना हौसला भी कर ले कि कोई बात नहीं अगर अब ये जाती भी है तो ठीक है, फिर क्या इतनी छोटी चीज के लिए थोड़े से पैसों के लिए तुम ऐसे करते हो, और फिर आगे भी अभी इतनी बात पे नहीं अल्लाह ताला ने रोका, आगे भी फरमाया वकैफ तअख़ुज़ूनहु, हो तुम कैसे लेते हो उससे, किस तरह तुम उसे वापस ले सकते हो, वकद अफदा बादुकुम इला बाद, तो देखते नहीं हो तुम किस तरह तुम्हारा हौसला होता है उसे लेने का, तो हालांकि तुमने उनके साथ अफदा यानी ताल्लुकात कायम किए हैं, और यहाँ पे सिर्फ अजदवाजी ताल्लुकात नहीं है बल्कि देखो जब मियाँ बीवी साथ रहते हैं अजदवाजी ताल्लुक तो एक चीज है ना, इसका पार्ट है, अब वो आपस में रहते भी हैं, आपस में एंजॉय भी करते हैं, एक दूसरे की कंपनी में भी होते हैं, एक दूसरे से लुत्फानंदोज होते हैं, खुश होते हैं, एक दूसरे से फायदा उठाते हैं, अब मतलब बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, तुम उनके साथ रहे हुए हो, वो तुम्हारी रीच में रही हैं, तुमने उनसे ताल्लुकात कायम किए हैं, और एक जिंदगी उनके साथ गुजारी है, अच्छे लम्हे भी उनके साथ गुजारे, तो इतना कुछ करके अब उसके बाद तुम कहते हो हाय लेके ना चली जाए, इतने पैसे मैं छोड़ दूं? देखिए सुभान अल्लाह, अगर ये माशरे में हमारे ये आयतें इंप्लीमेंट हो जाएं तो ये इतनी लड़ाइयां झगड़े होते हैं तलाकों के वक्त पैसों पे ही तो होते हैं, केसों पे केस अदालतों में चलते चले जाते हैं, ये पता हो तो ये चीजें हों, तो अल्लाह ताला ने वो वक्त याद कराया कि तुमने एक अच्छा वक्त भी तो इनके साथ गुजारा हुआ है, एक खुशी की हंसी खेल की बातें भी तो की हुई हैं, एक दूसरे को एंजॉय भी तो किया हुआ है, तो वो सब भूल गए, और अब ये मुतालबा कर रहे हो कि नहीं दे के जाए, वह अखदना मिनकुम मीथाकन गलीदा, और वो ले चुकी हैं तुमसे अहद पक्का, यानी उन्होंने तुम्हारे साथ निकाह किया था, उस वक्त तुमने मीसाकन गलीजा किसको कहा जा रहा है, निकाह को, निकाह तुमने किया, उन्होंने तुमसे निकाह करके एक मीसाक, निकाह जो होता है ना वो एक अहद होता है, किस चीज का अहद, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि आदमी ये अहद करता है कि इस औरत का माल जान इज्जत इसकी ना नफका इसका सब कुछ इसकी निगहदाश्त मैं करूंगा, मैं इसका निगहबान हूं, मैं इसकी टेक केयर करूंगा, मैं इसको अच्छी तरह रखूंगा, ये सब चीजें इस निकाह के एग्रीमेंट का हिस्सा है, तो तुमने तो इतना बड़ा एग्रीमेंट किया हुआ और अब तुम ये कहते हो कि ये दे के जाए सब कुछ, और उस निकाह के अंदर किस किस को गवाह बनाते हैं, अल्लाह को भी गवाह बनाते हैं और लोगों में भी गवाह होते हैं जिनको जिनके सामने आपने यह अहद किया होता है, और उसके बाद ये काम करते हो कि नहीं वापस दो। फिर एक और उनके यहाँ जो रसम थी जो मैंने आपको बताया कि आदमी मर जाता था तो उसका बेटा अपनी सुतेली माँ से शादी कर लेता था, और वजह क्या होती थी कि जो भी विरासत या जो भी इसका माल है वो हमें मिले, क्योंकि वारिस जो उनके बन जाते थे। तो उसमें बताया गया कि नहीं, आप ये नहीं कर सकते कि आप उनकी उनके साथ निकाह करो। तो फरमाया वला तन के हो, और ना तुम निकाह करो, माँ ना कहा आबाओ को मिन निसा, जिनसे तुम्हारे बाप दादा ने निकाह किया हो उनसे निकाह नहीं कर सकते, आबाओ को में सारे आ गए, सब आ गए, इल्ला मा कद सलफ, सिवाय जो गुजर चुका, जो गुजर चुका पहले, जो हो चुका, जो हो चुका इस्लाम से पहले। अब क्या आ गया कि अब सुतेली माओ से निकाह हराम है। इन्नहु काना फाहिशतन व मक्तन व साअ सबीला, और ये बड़ा बेहयाई का काम है और अल्लाह की नाराजगी का और बहुत बुरा रास्ता है। एक आदमी का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि उसने ऐसा किया है, तो फरमाया कि उसको कत्ल कर दिया जाए, इतना बड़ा सख्त गुनाह है। लिए इंसान माल के पीछे कहाँ तक चला जाता है। इसके बाद जहां पे हुर्मतों की बात आ रही कि किस से निकाह और नहीं कर सकते, वो भी सारे बता दिए गए। तो वो लिस्ट पूरी देख दी गई कि कौन कौन है कि जिन सारी औरतों से निकाह करना नाजायज है, वो हराम है, आदमी के ऊपर हराम है। उनमें से कुछ औरतें तो हैं जो अबदी महरम हैं, उनके साथ कभी भी निकाह नहीं हो सकता। कुछ हैं जो फॉर द टाइम बीइंग हराम है, किसी वजह से कोई कंडीशन है जिसकी वजह से वो हराम है आदमी के ऊपर, और वो जब कंडीशन हट जाती है तो फिर उनसे हलाल हो जाता है निकाह करना, वो हम देखते हैं। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, तुम्हारे ऊपर हराम कर दी गई तुम्हारी माएं, माँ से मतलब सिर्फ सकी माँ नहीं है, सुतेली माँ भी हराम है, ठीक है। सुतेली माँ यानी जिससे भी बाप का निकाह हुआ हो, बाप की शादी हुई हो, उससे कोई आदमी शादी नहीं कर सकता। इवन बाज़ उलमा ने तो यहाँ तक लिखा है कि अगर शादी हो गई है लेकिन रुख्सती नहीं भी हुई, यानी बाप ने उससे दबाजी ताल्लुक भी नहीं कायम किया और बाप उसको छोड़ देता है, तब भी बेटा उससे शादी नहीं कर सकता, ठीक है। ये भी बाज़ उलमा ने कहा है। तो यानी सुतेली माँ भी महरम है, और इसी तरह नानियां दादियां वो भी सारी माओं के इसमें आती हैं। वह बनातुकुम, और तुम्हारी बेटियां, और बेटियों के अंदर बेटियां नवासियां पोतियां सकी बेटियां सुतेली बेटियां सब आ जाती हैं। वह अखवातुकुम, और इसकी आगे भी बात आएगी बेटियों की, तुम्हारी बहनें, बहनों में भी सकी बहनें भी सुतेली बहनें भी, माँ जाई बहनें भी, बाप की तरफ से भी जो बहनें बनती हैं वो भी सारी। एक दफा किसी ने मुझे कहा कि मैं अपने सुतेले भाई के साथ हज पे जा सकती हूँ, लोगों ने कहा वो तुम्हारा महरम नहीं है। मैंने कहा तो कुरान कहता है कि बहनें महरम है आदमी की, तो सुतेली बहन भी महरम है। वह अम्मातुकुम, और तुम्हारी फूफियां, वह खालातुकुम, और तुम्हारी खालाएं, वह बनातुल अखी, और भतीजियां, वह बनातुल उख्ती, और भांजियां। और आप देखेंगे यहाँ पे लिमिटेड लिस्ट है औरतों की जिनसे आदमी की शादी नहीं हो सकती, वो हराम है, हराम है, ठीक है। आप ये लिस्ट देख लें, इसके अलावा सारी औरतें हलाल हैं, किसी के साथ भी शादी कर सकता है। लेकिन देखो शैतान कितना खबीस है कि वो इंसान को इन्हीं मुहर्रमात के अंदर डालता है, कि यहां पे आज जो हम वाकयात सुनते हैं कि अपने महरम रिश्तों के साथ कहीं बेटी कहीं बहन कहीं किसी के साथ इस तरह की हराम चीजों में आदमी पड़ते हैं, तो किधर शैतान ने जाके टांग तोड़ी कि वो जो सारी औरतें थीं जो जायज थीं और हलाल थीं उसके लिए उनको छोड़ के मुहर्रमात के साथ मुंह काला करता है। अब वो पता है अल्लाह ताला उसकी तरफ बिल्कुल नजरे रहमत नहीं करेगा, बहुत बड़ा बड़ा गुनाह है ये, से बात नहीं करेगा जो अपने हमसाये की बीवी से हराम हमसाए में कोई औरत है उससे जीना करता है, तो ये तो हमसाए की बात है ना। और जो अपने घर की बच्ची के साथ कोई ऐसा काम करे तो वो कितना बड़ा गुनाह होगा। और लोग आज मुंह काले कर रहे हैं अपने, इसीलिए औरतों को इतनी बातें जो कही जाती हैं ना वो उनकी अपनी प्रोटेक्शन के लिए कही जाती हैं। आज तो ऐसे हालात आ गए, बाज जगहों पे औरतें अपने घरों में भी महफूज नहीं है, अपने ऐसे महरम रिश्तेदार उनके साथ भी महफूज नहीं है। तो भांजियां भतीजियां व उम्महातुकुम अल्लाती अरदानकुम, और माएं तुम्हारी जिन्होंने दूध पिलाया तुमको यानी रजाई माँ, व अखावातुकुम मिन रजा, और बहनें तुम्हारी जो रजात से तुम्हारी बहनें वो भी हराम है। अच्छा लेकिन एक बात को आप समझ लें कि यानी सिर्फ वो बहनें नहीं, रजात जो नसब से रिश्ते हराम है ना वो रजात से भी हराम हो जाते हैं। यानी नसब से जैसे माँ हराम है, बेटियां हराम है, बहनें हराम है, फुप्पियां खालाएं हराम है, भतीजियां भांजियां हराम है, इसी तरह जो रजात के साथ भी इंसान के रिश्ते कायम होते हैं यानी रजात के थ्रू एक औरत का एक ने किसी लड़के ने दूध पिया हुआ है तो वो उसकी माँ बन गई, रजाई माँ उसको कहते हैं, और उसका हस्बैंड उसका रजाई बाप बन गया, और उनके बच्चे उसके रजाई बहन भाई बन गए, और उन जैसे उनके बच्चों की खालाएं और फुपियां हैं और भतीजियां भांजियां, इसी तरह इन इस बंदे की भी वो रजाई खाला रजाई फुपी और रजाई भतीजियां भांजियां होंगी, उनके साथ भी इसका नहीं रिश्ता हो सकता, कभी भी शादी नहीं हो सकती। हाँ मगर इस बच्चे ने दूध पिया है, इसके बहन भाइयों ने अगर नहीं पिया या इसके भाई ने तो नहीं पिया हुआ, तो उसकी शादी इसकी रजाई बहन से तो हो सकती है। ऐसे थोड़ी कि वो सारे इसके अपने बहन भाई चाहे उन्होंने नहीं भी उस औरत का दूध पिया हुआ तो तब उनके भी रिश्ता वहां पे बन जाए, नहीं सिर्फ उसका रिश्ता बंधेगा जिसने दूध पिया है, ठीक है। और रजात भी ऐसे ही कायम नहीं हो जाती, कम से कम 5 दफा पेट भर के दूध पीना चाहिए बच्चे को। वह अम्मा तो निसा इकुम, और माएं तुम्हारी बीवियों की यानी सासें तुम्हारी वो भी अब्दी महरम है, यानी जो रिश्ता दामाद का और सास का होता है ना ये अब्दी महरम का होता है। इसका अब्दी महरम मतलब क्या है, यानी वो आदमी अगर अपनी बीवी को तलाक दे भी देता है तब भी उसकी सास उसके ऊपर हमेशा के लिए हराम है, ठीक है। वरबाइबकुम अल्लाती फी हुजूरिकुम, अब ये बातों को आप समझें इसलिए कि हमारे सॉरी टू से हमारे लोगों को ये भी नहीं पता हमारे महरम कौन से हैं और नॉन महरम कौन से हैं। आज औरतों को इन्हें तो सारों को ही महरम समझती हैं, शौहर का दोस्त भी है ना तो वो भी महरम है, हाँ हमारे भाई है ना भाइयों की तरह ही है, नहीं वो महरम नहीं बन जाते इस रिश्ते में कहीं पे भी नहीं है, वो हमारे कजन्स है ना तो वो भी हमारे महरम की तरह ही हुए ना, नहीं वो भी नहीं आपके महरम की तरह कोई चीज नहीं होती, तो अब सारों को ही हमने तो भाई बनाया होता है, ये नहीं कि कोई बुरा है ये नहीं कहा जा रहा, मगर वो महरम नहीं है जिसको अल्लाह ने नहीं महरम बनाया और महरम नहीं है बस, वो कोई हिकमत नहीं है उसके अंदर। वह रबाइब कुमल्लाती फी हुरुजूरी कुम, और तुम्हारी बीवियों की बेटियां, तो कौन सी होती हैं बीवियों की बेटियां, यानी वो आदमी की बीवी नहीं है, सॉरी आदमी की बेटी नहीं है उसकी बीवी की बेटी है, क्या मतलब हुआ, यानी इस औरत जो इसकी बीवी है इसकी पहले भी तो कहीं शादी हुई हुई थी, वहां से आदमी फौत हो गया या उसने तलाक दे दी, वहां से भी तो उसके बच्चे थे कोई, तो वो अब बच्चे लेके आई है और उसने इसके साथ शादी कर ली, ये उसका दूसरा शौहर है, तो पहले शौहर से जो बेटियां हैं वो ये बाप के ऊपर हराम होंगी, यानी सुतेली बेटियां जिनको कहते हैं, ठीक है। और आदमी की ये सुतेली बेटी कैसे बनती है कि इस औरत की तो बेटी है मगर पिछले शोहर से है, समझ आ गई। अल्लाती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दखल तुम बिहिन, अल्लाती फी हुजूरिकुम या जो तुम्हारी गोदों में है, तुम्हारी गोदों में क्या है यानी वो औरतें लेकर आई उन बच्चियों को, जाहिर है जहां माँ जाएगी वो बच्चियां भी जाएंगी, लेकिन हमारे किसी ने मुझे ये बताया और मुझे बहुत ही दुख हुआ कि हमारे ड्रामों के अंदर ये दिखाया जाता है कि एक आदमी है अब वो उसकी बीवी है लेकिन उसकी जो बेटी है वो जाहिर है अब जवान हो रही है, वो उसको ये अब बुढ़ी बीवी कहाँ अच्छी लगेगी, वो जो जवान होती हुई जाहिर है इसकी सुलभ से तो नहीं है, इसकी अपनी सकी बेटी तो नहीं है ये, तो वो अब उसके ऊपर गंदी नजर रखने लगता है, क्योंकि हालांकि ये देखो कुरान कहता है कि वो जो सुतेली बेटियां वो भी बेटियां हैं, वो अब उसको अपनी बीवी में कोई इंटरेस्ट इसलिए नहीं रहता कि वो तो अब उधेड़ उम्र हो रही, लेकिन वो जो लड़की अपने साथ लेकर आई थी वो अब जवान है, या लाई भी तो जवान थी वो। अब इस आदमी के लिए ये बच्ची हराम है। हाँ, इस आदमी की भी पहली बीवी से अगर कोई बेटा है तो वो आपस में इन दोनों की शादी हो सकती है, वो उनका नहीं आपस में कोई, इस औरत से नहीं जिसकी ये बेटी है। इस आदमी की भी अगर पहली बीवी से बेटा तो जाहिर है दोनों बच्चों के माँ बाप डिफरेंट हो गए, उनकी शादी हो सकती है, मगर इस आदमी को वो ऐसे ही है जैसे वो बेटी है। फिर हुजूरी का मतलब तुम्हारी गोदों में, यानी तुम्हारे घर में पल रही हैं वो, तुम्हारी बीवियों में से जो जिनसे तुमने दखूल किया हो, यानी जिनसे रुखसती हो गई हो, तुमने उससे ताल्लुक कायम कर लिया। हाँ, अगर रुखसती ही नहीं हुई, पहले ही तलाक दे दी है, तो वो फिर ये रबीबा ही ना बनी ना। रबीबा उसको कहते हैं जिस औरत के साथ आदमी ने शादी कर ली, रुखसती हो गई, ताल्लुक कायम हो गया, सोहबत हो गई, दखल तुम भी हिन्ना का मतलब है उससे सोहबत हो गई है, तो अब ये उसकी रबीबा बन गई है। रबीबा मतलब अब उसकी सुतेली बेटी बन गई है, यानी उसकी बीवी की बेटी है, आदमी की नहीं है, लेकिन रबीबा होने के नाते अब उसके साथ उसके ताल्लुक बाप बेटी वाला ही होगा। और अरब माशरे में तो ये बहुत आम था कि वहां पे पिछली आदमियों से औरतों की बच्चियां होती थी। अच्छा, अब अगर किसी कोई अपने साथ घर में नहीं लेकर आई, मसला ना कहीं और है, उसकी बेटी किसी और के पास पल रही है, मिसाल के तौर पे वो अपने बाप के पास ही है बच्ची, बाप ने रख ली भी है, एक औरत है, उसने उसकी तलाक हो गई, बाप ने बेटियां रख ली, अब इसने दूसरी जगह शादी कर ली औरत ने, अब इसका दूसरा जो खामिंद है उसके लिए अभी भी ये बेटियां रबीबा ही हैं, चाहे वो इनकी इसकी गोद में नहीं भी पल रही, इसके घर में नहीं भी पल रही, वो उसकी रबीबा है। मजा आ गई बात। फइल्लम तकूनु दखलतुम बिहिन्ना फला जुनाह अलैकुम, मैंने आपको जैसे बता दिया पहले कि अगर रुखसती नहीं हुई है, ताल्लुक नहीं हुआ है, तो फिर कोई हर्ज नहीं है। वह हलाइलु अबनाइकुम अल्लदीन मिन असलाबिकुम, और बीवियां तुम्हारे बेटों की, वो बेटे जो तुम्हारी सुलबों से, यानी तुम्हारे सके बेटे, वो वाले बेटे नहीं जो जिनको कहते हैं ले पालक, अडॉप्टेड बेटे नहीं, वो तो हजरत जैद की भी शादी हुई थी हजरत जैनब के साथ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाद में निकाह हुआ हजरत जैनब के साथ, तो ले पालक बेटों की नहीं बात हो गई, सक्का बेटा जो है ना उसकी बीवी, यानी सास सॉरी सुसर और बहू, इन दोनों का भी महरम का रिश्ता है, सुसर और बहू का महरम का रिश्ता है। लेकिन ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपने भी सुनी होंगी, इन 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 चीजों के अंदर भी क्या क्या हालात आजकल चल रहे हैं। वह अन तजमा बैन अल उख्तैन इल्ला मा कद सलफ, और ये कि तुम जमा करो दो बहनों को मगर जो गुजर चुका सो गुजर चुका, यानी तुम दो बहनें भी, यानी एक के साथ निकाह हुआ हुआ तो दूसरी के साथ नहीं हो सकता इस वक्त, वो भी एक तरह की जुजवी महरम ही है, जुजवी, यानी अगर ये खत्म हो गई शादी, इस औरत को तलाक दे दी या वो फौत हो गई, तो फिर दूसरी बहन से शादी की जा सकती, मगर एक ही वक्त में दो बहनों को निकाह में नहीं लाया जा सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक बेटी का पहले निकाह हज़रत उस्मान से किया था, फिर वो फौत हो गई तो फिर दूसरी का किया, लेकिन एक टाइम पे नहीं कर सकते। इसी तरह यहीं से हदीस में आता है कि पुप्पी भतीजी भी नहीं जमा हो सकती और खाला भांजी भी नहीं जमा हो सकती, यानी एक औरत का जो भांजी का हस्बैंड है वो भी उसके लिए जुज़वी महरम हुआ, या भतीजी का हस्बैंड है जुज़वी महरम हुआ, यानी जिस वक्त वो इस औरत की भतीजी या भांजी उसके निकाह के अंदर है, तो उस वक्त वो आदमी इस पुप्पी से या खाला से निकाह नहीं कर सकता। इन्ना अल्लाह कान गफूर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है, जिसने ये अहकाम हमें दिए, और इन अहकाम के थ्रू इन औरतों को अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी प्रोटेक्शन दे दी, क्योंकि ये रिश्ते वो हैं जो जिनके साथ आमदो रफ्त बहुत होती है, जिनके घरों में आना जाना बहुत होता है, या ये साथ ही रहते हैं, अगर इनको हराम ना किया जाता और इस चीज को ना, चाहे वो नसब के हैं, चाहे रजात के हैं, चाहे वो निकाह की वजह से ससुराली रिश्ते बनते हैं, अगर इनको ना हराम किया जाए तो बहुत चांस हो सकता है कि इंसान इनमें कहीं कोई ज्यादती हो जाए इनके साथ। तो अल्लाह ने उन औरतों को प्रोटेक्शन दे दी ये अहकाम दे के। आदमियों की नजरों से उनको बचा लिया। बाकी बाकियों की नजरों से कैसे बचेंगी? बाकियों से तो तभी मिलेंगी जब कहीं बाहर जाएंगी, या वो घर के अंदर आएंगे किसी महरम की मौजूदगी में, या खुद बाहर जाएंगी तो पर्दे में जाएंगी, तो फिर वहां पे तो एक प्रोटेक्शन आ जाती है ना। मगर ये जगह ऐसी हैं जो घर घर की हदूद है, ये मर्द घरों के अंदर घूमते हैं। तो जब इन मर्दों के साथ औरतों का इतना इंटरेक्शन होगा, तो अगर प्रोटेक्शन अल्लाह की तरफ से नहीं दी जाती तो फिर कहीं कुछ मसला ना हो जाए। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला ने अहकामात दे के बड़ा इंसान के ऊपर फजलो करम फरमाया। अल्लाह ताला हम सब से ये सीखना कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला जो आयात हमने आज पढ़ी हैं, अल्लाह ताला इनकी सही समझ हमें अता फरमाए और इन पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। जो मुहर्रमात हैं इनका हमें इसलिए भी बहुत पता होना चाहिए कि हमें पता हो कि किन मर्दों के साथ हमारे ऐसे रिश्ते हैं कि जिनके में थोड़ी सी हमें रिलैक्सेशन मिल सकती है। कहीं पे ऐसे रिश्ते हैं जो बिल्कुल हराम है, वो हमारे महरम नहीं हैं, उनके साथ हमारी किसी तरह का भी उस तरह हमारे अपनी ब्यूटी डिस्प्ले करना हराम हो जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है, और अल्लाह ताला हमें माफ़ करे जो मा कद सलफ़ जो गुजर चुका उस पे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيماً